ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਹੈ। ਜੈ ਰਾਧਾ ਮਾਧਵ ਕੁੰਜ ਬਿਹਾਰੀ,
ਸੁਭਦ੍ਰਾ ਮਈਆ ਜਗਨ ਜਗਨ
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंध का ये दूसरा अध्याय है। श्लोक की क्रम संख्या है 16, 10.2.16। प्रेयर्स बाय द डेमिगॉड, देवताओं के द्वारा भगवान की स्तुति। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकर आविवेशांश आविवेशांश भागेन मन अनद्दुदुम्भे। भगवान अपि विश्वात्मा भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकर भक्तानां अभयंकर आविवेश अंशभागेन आविवेश अंशभागेन मन आनक्दुदुम्भे मन आनक्दुदुम्भे। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकर आविवेशं सभागेन मन आनक्दुदुम्भे। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकर आविवेशं सभागेन मन आनक्दुदुम्भे। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकर आविवेश अंशभागेन मन आनद्दुदुम्भे। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकर आविवेशं सभागेन मन आनद्दुदुम्भे। माताजी भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकर आविवेशं सभागेन मन आनद्दुदुम्भे। भगवान भगवान श्री कृष्ण अपि भी विश्व आत्मा सारे जीवों के परमात्मा भक्तानां अपने भक्तों के अभयंकर भय के कारण को मारने वाले आविवेश प्रविष्ट हो गए अंशभागेन अपने सारे ऐश्वर्यों के साथ षट ऐश्वर्य पूर्ण
मन
मन में
आनक
दुदुम्बे वसुदेव के मन में। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज ने दिया है। श्रील प्रभुपाद महाराज की श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले भगवान वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समेत प्रविष्ट हो गए। इस तरह कृपया दोहराइए, इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले भगवान वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समय प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य, विश्वात्मा शब्द द्योतक है, उसका जो हर हृदय में स्थित हो ईश्वर सर्वभूताना हृदयस्य अर्जना तिष्ठति। विश्वात्मा का दूसरा अर्थ है हर एक की एकमात्र प्रिय वस्तु। इस वस्तु को भूल जाने से ही लोग भौतिक जगत में कष्ट भोग रहे हैं, किंतु यदि कोई कृष्ण प्रेम करने की अपनी पुरानी चेतना को जागृत कर लेता और विश्वात्मा से अपने को जोड़ लेता है तो वह पूर्ण बन जाता है। तृतीय स्कंद में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है, परावरेतो महदंत युक्तो यजोपि जातो भगवान, अजन्मा होकर भी सबके प्रभु भगवान भक्त के मन में प्रविष्ट होकर शिशु की तरह प्रकट हुए लगते हैं। प्रभु पहले से ही मन के भीतर रहते हैं, अतः एव भक्त के शरीर से उनका उत्पन्न होना आश्चर्यजनक नहीं लगता। आ विवेश शब्द बताता है कि वे वसुदेव के मन के भीतर प्रकट हुए, वीर्य स्खलन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। श्रीपाद श्रीधर स्वामी तथा श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का यही मत है। वैष्णव सोसानी में श्रीला सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वसुदेव के मन के भीतर चेतना जगी। श्रीला वीर राघव आचार्य भी कहते हैं कि वसुदेव देवताओं में से एक थे और चेतना जागृत होने के रूप में भगवान उनके मन के भीतर प्रकट हुए। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकर आविवेश अंशभागेन मन आनंद दुदुम्बे। ओम ज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदं। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा, मेरा ये नम्र निवेदन है, कृपया आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। जैसा कि मैं हमेशा बताया हूँ और आप सब लोग जानते भी हैं कि व्यास आसन पर बैठना या भागवत से प्रवचन देना मेरी क्षमता नहीं है, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रार्थनाओं से मैं हमेशा ये प्रयत्न कर रहा हूँ। तो आज का भी मेरा प्रयत्न आपके आशीर्वाद पर आधारित है। यह श्रीमद् भागवतम का दसम स्कंध, जिसका इस कथा का थोड़ा सा वर्णन मैंने कुछ 7-8 दिन पहले रविवार के प्रवचन में किया था, आप लोग कुछ लोग मौजूद होंगे उस समय। कंस की बहन देवकी का विवाह था, देवताओं ने आकाशवाणी की कि कंस का देवकी का 8वां गर्भ कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। फिर वो उन्हें जेल में डालता है और मरीचि के जो 6 पुत्र श्रापित पुत्र थे, उन 6 पुत्र का एक के बाद एक जन्म होता है। कंस जो उनके ही पूर्व जन्म में पिता रह चुके थे और पिता से ही चाचा से श्राप मिला था कि पिता के हाथ से मृत्यु होगी, तो कंस के हाथों ही उनकी मृत्यु होती है, जिसकी डिटेल चर्चा मैंने उस प्रवचन में की थी कि कैसे वो लोग अपने ही पिता के द्वारा मारे जा रहे हैं। कालनेमी जो हिरण्याक्ष का बेटा था, और अब कंस बन के आया है। अब 6 पुत्र मारे जाने के बाद 7वां जो पुत्र हैं वो स्वयं बलराम अनंत शेष थे, उन्हें बलभद्र भी कहते हैं। बलभद्र इसलिए कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में अगर अपवित्रता है, हमारे जीवन में अगर दुख कष्ट अपवित्रता है, तो जिनका नाम लेने से बलपूर्वक पवित्रता हमारे जीवन में प्रवेश करेगी उसे बलभद्र कहते हैं। अगर आप एक बार बलराम का नाम ले लो तो पवित्रता जो है वो अपने जीवन में बलपूर्वक प्रवेश कर लेती है, इतना शक्तिशाली वो नाम है बलभद्र। लेकिन वो भगवान की इच्छा थी, योग माया ने उसे रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया, इसलिए उनका एक नाम पड़ा संकर्षण। अब कंस थोड़ा विचलित हो गया, अब पता नहीं 8वां पुत्र श्री श्री राधा गिरिधारी जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री निताई गौर चंद्र की, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अब कंस थोड़ा विचलित हो गया, गिनते क्या करे, 6 गए, 7वां आने वाला था लेकिन आया ही नहीं। एक भौतिक जगत के व्यक्ति को तो एबॉर्शन जैसा लगेगा कि भाई क्या हुआ, पता नहीं कहां चला गया, क्या हो गया। ठीक है, 8वां पुत्र अब जो आने वाला है वो 7वां 8वां का कंफ्यूजन उसके मन में था, लेकिन उसने सोचा जो भी हो, जितने भी पुत्र होते हैं 7वां 8वां 9वां 10वां जितने भी पुत्र है उसे मारना है। आगे चल के अगर पता नहीं चलेगा तो जितने भी जन्मे हुए नए बच्चे सबको मार डालेंगे, पता ही नहीं है कौन सा कृष्णा है तो सबको मार डालेंगे। ये सब सोच के असुर लोग तैयारी बैठे हुए थे। यहां भगवान योग माया को आदेश देते हैं कि यशोदा मैया के वहां आप जन्म लेना और मैं देवकी के वहां जेल में प्रकट होऊंगा, जन्म लूंगा ऐसे नहीं बोले, प्रकट होऊंगा। क्योंकि भगवान को जन्म तो लेना नहीं है, जो अजन्मा है उसे जन्म तो लेना नहीं है, प्रकट होना है। अब प्रकट अपनी स्वयं इच्छा से जब चाहे जहां चाहे किसी भी रूप में हो सकते हैं, खंभे से भी प्रकट होते हैं बिना माता पिता के, है ना, कोई जरूरी नहीं है कि माता पिता होने चाहिए। या हंस अवतार में हम देखते हैं कि भगवान ब्रह्मा के सामने ऐसे ही हंस के रूप में अचानक प्रकट हो गए। वराह देव का अवतार भी ऐसे ही है, मत्स्य अवतार भी ऐसे ही है, प्राय सारे अवतार उनके पहले के तो जो सत्ययुग के और त्रेता युग तक यही दिखाते थे कि वो अजन्मा है, लेकिन जब से ये त्रेता युग आया और भगवान रामचंद्र माता पिता को स्वीकार करते हुए आए तो किसी कम बुद्धि जीवों के हृदय में ये शंका होने लगी कि भगवान सही में अजन्मा है या नहीं है, या ये जो आ रहे हैं वो भगवान है या और कोई है, क्योंकि ये तो माता पिता को स्वीकार कर रहा है ना। रामचंद्र ने माता पिता को स्वीकार किया। तो यहां पे भागवत में ये वर्णन है, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं ये अजन्मा है, इसकी साक्षी उन बीच में जो कुछ तथाकथित लोगों के मन में जो शंका आई थी उनको और मीन्स उसकी शंका दूर करने के लिए यहां पे दोबारा जब भगवान आ रहे हैं माता पिता स्वीकार कर रहे हैं लेकिन प्रकट कैसे हो रहे हैं, सर्वप्रथम वसुदेव के मन में प्रकट हुए। अब मन कहां होता है, मन शरीर के कौन से हिस्से में स्थित है, यहां पे, राइट। कितने लोग कहते हैं कि मन यहां पे होता है, कृपया हाथ ऊपर कीजिए। जितने लोगों का यह कहना है कि मन यहां पे स्थित है हाथ ऊपर कीजिए, और जो नहीं कर रहे वो बताएंगे कि कहां पे स्थित है मन। कृष्ण शिष्य प्रभु सही बता रहे हैं, हृदय में। ये प्राय भ्रांत धारणा है समाज में, संसार में, मेडिकल साइंस में भी शायद, कि मन यहां है। वास्तव में मन यहां है, यहां नहीं है उसका स्थान। मन एक सटल है, सटल यानी कोई ऐसी ग्रॉस जड़ वस्तु तो है कि जिसे खोल के देखा जाए या बताया जाए या एक्सरे से उसको चेक किया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये सूक्ष्म वस्तु है और उसका स्थान है हृदय, ना कि ये खोपड़ी में नहीं है, हृदय में है। अब जब उसे दिखाया नहीं जा रहा है तो पता कैसे चल रहा है, ये दूसरे को नहीं दिखाया जा सकता या समझाया जा सकता, लेकिन स्वयं हम समझ सकते हैं कि हाँ मेरा मन है, हाँ जो मुझे चिंतन करवाता है या चिंता करवाता है, ये सब चल रहा है। तो अगर मन यहां है तो हरेक के हृदय में परमात्मा बसे हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि परमात्मा हरेक व्यक्ति के मन में पहले से ही है ना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, ऐसा भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। तो मन में तो बसे हुए हैं भगवान, अब यहां ऐसे क्यों कहा जा रहा है कि वसुदेव के मन में प्रविष्ट हुए, है ना। वसुदेव के मन में प्रविष्ट हुए क्या पहले से ही थे? प्रविष्ट होने का अर्थ यहां पे यह है जो हमारे प्रभुपाद जी और आचार्यगण बताते हैं कि वसुदेव ने उस समय ये अनुभूति की या रियलाइज किया कि अरे मेरे हृदय में भगवान प्रवेश किए, हालांकि पहले से थे। वसुदेव ने उस समय रियलाइज किया, अनुभूति की कि मेरे हृदय में भगवान प्रविष्ट हुए, इसीलिए ऐसे बताया जा रहा है कि प्रविष्ट हुए, वास्तव में थे तो पहले से ही। अब ये भगवान जो वसुदेव के हृदय में प्रविष्ट हुए तो सारा दुख चिंता जितना भी रहता है, भय जो रहता है, भक्तानाम अभयंकर, ये दूसरा लाइन है श्लोक का, भक्तानाम अभयंकर। जैसे ही भगवान का हृदय में अनुभूति होता है वैसे ही भक्त के हृदय से सारा भय जो है वो खत्म हो जाता है। और तब तक जब तक अनुभूति नहीं है, वही भगवान जो हृदय में बैठे हुए फिर भी हमारे हृदय में साथ साथ में हमारे मन से उत्पन्न हुए कार्यकलापों से उत्पन्न हुए भय की स्थिति को रखता है, वहां पे भयभीत हम रहते हैं, फियरफुल। एक भक्त और अभक्त का एक ही तफावत है, भक्त फियरलेस होता है, निर्भय होता है, अभय होता है, और अभक्त जो होता है वो भयभीत रहता है, उसे सदैव चिंता रहती है अपने अस्तित्व की, अभी की और आने वाले समय में अपने और अपने परिवार के अस्तित्व की। शिला प्रभुपाद जी एक बार विदेश में गए थे तो एक रिपोर्टर ने 1975 में पूछा प्रभुपाद जी आपने इतनी सारी सफलता कैसे प्राप्त की विदेश में? हाँ, इतना सारा जो 12 साल के अंदर आपने इतने सारे मंदिर बनाए, करोड़ों रुपया डोनेशन में प्राप्त किए और हजारों भक्त बनाए, ये इतनी सारी सफलता आपने 12 साल में कैसे प्राप्त की? अब वो रिपोर्टर कोई भक्त तो थी नहीं कि उसे भक्ति के स्तर पे कोई बड़ा उत्तर दिया जाए। एक आम फॉरेनर व्यक्ति है जिसे कुछ पता ही नहीं है। प्रभुपाद ने यही वाक्य में उत्तर दिया, आई कुड डू इट बिकॉज आई वॉज फियरलेस। मैं ये कर सका क्योंकि मैं हमेशा निर्भय रहता हूं, मुझे कभी भी कोई डर नहीं रहता है। भक्ता नाम अभयंकर, जिसके हृदय में परमात्मा है वो सबके हृदय में है, लेकिन जिसने अनुभव कर लिया, अनुभूति कर लिया, वो फियरलेस है। और जो निर्भय है, जो अभय है, वो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं इस संसार में। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी देखे 1965 से हम देख रहे हैं उनका लीलामृत, कई कितने कष्टों को सहन करते हैं। 40 रुपया लेकर जाना कोई छोटी बात नहीं है, सिर्फ 40 रुपया। 40 रुपये में अमेरिका में जाके क्या करना? प्रभुपाद जी स्वयं कहते कि वो तो एक दिन का खर्च था मेरा उधर, जबकि एक साल तक 1966 तक एक भी पैसा डोनेशन में आने की कोई संभावना नहीं हुई थी, कोई व्यक्ति नहीं था जो उन्हें वहां मदद करे। लेकिन एक ही साल में शिला प्रभुपाद जी ने निर्भय होकर सारी मुसीबतों को सहन करते हुए 1966 में सर्वप्रथम इस्कॉन मंदिर न्यूयॉर्क अमेरिका सिटी में स्थापित किया। और सबसे पहला जो जन्माष्टमी उस समय वहां पे था, उस दिन प्रभुपाद जी कुछ विदेशी भक्तों को दीक्षा देने वाले थे। अब दीक्षा तो देना है, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं था। आज के जैसा नहीं है कि आजकल दीक्षा लेना है तो कई 2-3 साल काउंसलिंग सिस्टम में रह के वो 16 माला रोज जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, किसी काउंसलर के अंडर में है, उसको सब पता है, हर कितनी एग्जाम लेते हैं, क्या क्या पता करते हैं, बाद में दीक्षा देते हैं। उन दिनों में वो सब सिस्टम तो अभी तो जस्ट इस्कॉन मंदिर बना है तो उसको बढ़ाना है। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे ही बताया कि कल जन्माष्टमी है, मैं दीक्षा देना चाहता हूं, जिनको जिनको दीक्षा लेनी है वो अपना नाम लिखा दें। तो कुछ लोगों ने अपना नाम लिखा दिया, बोले हम लोग दीक्षा लेंगे। अब प्रभुपाद जी जानते थे कि इनमें से कोई कुछ नहीं जानता कि दीक्षा का अर्थ क्या होता है, और कितने सीरियस है कितने सीरियस नहीं है पता था, सब किसी को सीरियसनेस नहीं है। फिर भी प्रभुपाद जी ने इमरजेंसी फुटिंग पे इस्कॉन स्थापित करने के लिए सोचा, जो भी हो ये लोग आए हैं ना, समाओ और अदरवे इस अमेरिका शहर में ये आए हैं ना, इनको दीक्षा देकर इनको आगे बढ़ाना है और प्रचार कार्य आगे बढ़ाना है। तो उस दिन जन्माष्टमी के दिन सुबह से सब आए, तो प्रभुपाद जी ने बताया आज जन्माष्टमी है, आज दीक्षा भी होगी, किसी को भी कोई भोजन या पानी नहीं देना है। तो सब लोग चिंता में पड़ गए, अरे ये कल बताते तो हम नाम ही नहीं देते थे, आज क्यों बता रहे स्वामी जी? अब चिंता हो गई उनको। तो फिर प्रभुपाद जी ने देखा, अरे ये तो चिंता कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बताया, अच्छा डरो मत, फ्रिज में कुछ जूस वगैरह है, किसी से नहीं रहा जा सकता तो वो जाके पी सकते हैं। तब उनको थोड़ी राहत हुई। फिर प्रभुपाद जी ने जन्माष्टमी का जो कृष्णा बुक पढ़ना, क्लास देना, ये सब शुरू किया। यज्ञ कुंड वगैरह बनाया था, एक ही कमरा था, छोटा सा, एक हॉल के जितना, जैसे सृष्टि में अगर हम रहते हैं तो अपना हॉल कितना छोटा है, उतनी साइज का, और खिड़कियां बंद रखने की। क्यों? क्योंकि बाहर वालों को पसंद नहीं था यहाँ पे कीर्तन ये वो होता है। तो उस कमरे के अंदर खिड़कियां बंद रख के बहुत आदमी प्रभुपाद जी बीच में हवन कुंड, हवन में जो धुआं निकलेगा वो उसी कमरे के अंदर रहेगा। तो थोड़ा देर हो रही थी, एक माता जी थी जिसने नाम दिया था दीक्षा के लिए, तो वो कहती है कि स्वामी जी मेरा नाम तो दीक्षा में आप दे रहे अभी, नहीं तो मुझे तो जाना है, मुझे तो मेरे एक बछड़े को खिलाने के लिए भी जाना है, मैं तो चली। वो उठ के खड़ी हो गई, बोले स्वामी जी मैं तो जा रही हूँ, मैं नहीं रुक सकती ज्यादा अभी। तो किसी भक्त ने बताया, अरे रुको तुम्हारी दीक्षा होगी, नहीं नहीं मुझे जरूरत नहीं करके वो चली गई। मिस लोग कितने सिंसियर थे या नहीं थे उस स्थिति को मैं प्रकट कर रहा हूं कि लोग कैसे थे शुरुआत के दिनों में। फिर थोड़ी देर हुआ तो वो माता जी तो चली गई, उसकी दीक्षा उस दिन नहीं हुई। थोड़ी देर हुआ तो एक शिष्य ने पूछा, स्वामी जी आप जो ये एक साल से प्रवचन देते हैं, कभी कभार वो बताते थे ना कुछ फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, चार नियम है, तो क्या हमें ये दीक्षा लेने के बाद उसका पालन करना पड़ेगा क्या? ऐसा प्रश्न पूछ रहे वो लोग। हाँ स्वामी जी, इसका पालन करना पड़ेगा क्या आज हम दीक्षा लेते हैं? तो प्रभुपाद जी हंसते हुए कहते, आई एम ग्लैड दैट समबडी हैज आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, आई वॉज वंडरिंग कि मैं बताऊं या न बताऊं, कैसे बताऊं, मैं डर रहा था, लेकिन आपने पूछ लिया तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने पूछा करके। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि हाँ पालन तो करना ही पड़ेगा, दीक्षा लेने का अर्थ ही वही है, पालन करना पड़ेगा। तो आधा बैच उठकर बाहर निकल गया, बोले हमें दीक्षा नहीं चाहिए करके, उठकर चले गए। बहुत कम लोग बचे, 5-6 लोग बचे, बोले अगर नियम पालन करना है तो हमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। मींस वी कैन इमेजिन यू नो क्या सिचुएशन थी, किसी का कोई डेडिकेशन नहीं था, किसी को कुछ ज्ञान नहीं था, ऐसी परिस्थिति में एक अमेरिका जैसे दूर शहर में सात समंदर पार करके 70 साल के एक व्यक्ति फियरलेसली निर्भयता से एक हरे कृष्ण आंदोलन को स्थापित करते हैं, जो आज एक विश्वव्यापी इतना बड़ा आंदोलन है। कितना फियरलेसनेस रहेगा, निर्भयता देखिए, कोई धन नहीं, कोई साथ नहीं, कोई सिंसियरिटी शिष्य की नहीं। आज तो इस्कॉन में ऐसे हजारों शिष्य जो 100% शरणागत है, और बाकी जितने भी है वो एटलीस्ट 50-60-70% लोग बरोबर जानते हैं कि उनको चार नियम का पालन करना है और करते भी है। बहुत ही कम लोग हैं जो नहीं करते हैं। एक शिष्य थे प्रभुपाद जी के उस समय के, जयानंद प्रभु, वो बहुत सिंसियर थे, लेकिन वो ये जानते थे कि हमारे देश में ऐसे लोग नहीं है जो चार नियम का पालन कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया था कि देखिए भाई, जैसे भी हो, जो भी हो, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं इस संस्था से, उनको जोड़ने का प्रयत्न करते रहो। तो एक व्यक्ति था जिसका दीक्षा भी हुआ था, चार नियम पालन करने का उसे पूछा बताया गया था, लेकिन बाद में वो सिगरेट पीता था मंदिर में ही रह के। तो एक दिन किसी ने डांट दिया, रे तुझे पता है चार नियम का पालन करना है, तो मंदिर में रह के सिगरेट पी रहा है, अच्छी बात नहीं है। और शुरुआत के दिनों की बात है, उसको भगा दिया मंदिर के किसी सदस्य ने, उसको भगा दिया, बोले तुम भाग जाओ। तो बेचारा चला गया, चला गया तो थोड़े दिन दिखा ही नहीं। फिर अचानक एक दिन जयानंद प्रभु पूछे, कह रहे वो कहां गया, वो भक्त दिख रहा है। तो किसी ने बता रहे वो तो सिगरेट पीता था, उसको भगा दिया। तो वो प्रभुपाद जी के मिशन को अच्छी तरह समझ रहा था कि प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें ऐसे अनेक लोगों की आवश्यकता है जो एटलीस्ट स्वीकार तो कर रहे हैं कि कृष्ण तू भगवान स्वयं, स्वीकार तो कर रहे हैं, और सबके हृदय में भगवान विराजमान है। आज नहीं तो कल उसका अनुभूति सबको करना ही है। ऐसा नहीं है कि बाहर से भगवान को लाकर उसके हृदय में बिठाना है। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज देयर इन एवरीवन्स हार्ट, सबके हृदय में है। ऐसा नहीं है कि आपके हृदय में नहीं है या किसी के हृदय में नहीं है, उसे नए से उसके अंदर स्थापित करना ऐसा नहीं है, है सबके हृदय से, उसको केवल अनकवर करना है, डिस्कवर नहीं करना है, अनकवर करना है, सिर्फ उसको रियलाइज या अनुकरवाने का है कि है वो, उसको स्वीकार कर तो निर्भय हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि अन्यथा विदेश में भक्ति का प्रचार करना असंभव होता, अगर सबके हृदय में भगवान नहीं रहते या कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना नहीं रहती तो, क्योंकि नहीं रहती तो मैं थोड़ी अंदर डाल सकता था स्वाभाविक, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं था, वो है उसको सिर्फ मैंने अनडिस्कवर किया, अनकवर किया। तो ऐसे चल रहा था प्रभुपाद जी का, तो जयानंद प्रभु ने सोचा कि नहीं, उस व्यक्ति को कैसे भी करके लेके आना है। तो जयानंद प्रभु ढूंढते ढूंढते गए, भाई कहां कहां हो सकता है, एक होटल में पहुंचे जहां पता चला कि ये व्यक्ति उस होटल के उस कमरे में है। आप मानेंगे नहीं, जयानंद प्रभु होटल में जब पता चला ऊपर है तो पहले बाहर गए, सिगरेट का एक पैकेट खरीदा और फिर ऊपर गए, नॉक किया और उसका आवाज आया, कौन? तो बोले जयानंद। तो दरवाजा खोला और शर्म के मारे ऐसे नीचे सर करके ऐसा आंख नीचे करके देख रहा था, तो जयानंद प्रभु क्या कहते मालूम है, ये तुम्हारे लिए मैं सिगरेट लेके आया हूं, तुम्हें ये ब्रांड पसंद है ना, ये लीजिए। देखिए शुरुआत कैसे अच्छी तरह से की उसने, डांटने का या समझाने का नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, तुम्हें पसंद है ना, ये लीजिए। तब उसने जयानंद को अंदर लिया और फिर वार्तालाप हुआ और उसने बोला अरे क्या है, अनर्थ रहेंगे, चिंता मत करो, अनर्थ की चिंता मत करो, अंदर हृदय में प्रभुपाद जी ने कहा है कि भगवान है, इसलिए भक्तानाम अभयं कर, तुम्हें निर्भय होके मंदिर में रहना है, किसी ने डांट दिया कोई बात नहीं, लेकिन तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें अभी मदद करता रहूंगा, कोई भी कंप्लेन है मुझे बताओ करके जयानंद प्रभु उसे मंदिर में लेके आते हैं। ऐसे ऐसे लोग थे ना कि हम सुनेंगे तो हमको पता चलता कि कितने इनसिंसियर लोग रहेंगे उस समय के लोग, लेकिन प्रभुपाद जी ने उन्हीं सभी लोगों को लेकर इतना बड़ा आंदोलन को स्थापित किया। इसे कहते हैं अभयंकर, इसीलिए शिला प्रभुपाद जी का नाम उनके पिताजी ने क्या रखा, अभय चरण, उनके गुरु महाराज ने क्या रखा, क्या रखा, अभय चरणारविंद। उन्होंने भी ये नाम के ऊपर जोर देते हुए दीक्षा देकर वही नाम दिया कि हां ये व्यक्ति वास्तव में अभय चरण है, बिकॉज भक्तानाम अभयंकर, ये जानते हैं कि कृष्ण हमारे हृदय में है। सारे भक्त जितने भी होते हैं सबको पता है कृष्ण हमारे हृदय में है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे जीवन में कोई भय नहीं आएगा, भय मुझसे सदैव आएगी क्योंकि हम इस भौतिक जीवन में है, चाहे हम शुद्ध भक्त बन जाएं, चाहे अशुद्ध भक्ति के स्तर पे ही पूरा जीवन बिताएं, जब जब हम जब तक हम इस भौतिक जगत में, हमारे जीवन में कष्ट मुसीबतें आती ही रहेगी, भयभीत परिस्थितियां सदैव निर्माण होती रहेगी, लेकिन व्यक्ति उस परिस्थिति में जो निर्भय रहता है वो भक्त होता है, और जो भयभीत हो जाता है उसकी साधना में कमी है। अर्जुन के जीवन में देखिए, अर्जुन के जीवन में भी अनेक भय आया, जब अश्वत्थामा के पीछे अर्जुन भाग रहे थे उसे मारने के लिए, तो अश्वत्थामा ने बिना सोचे समझे अपने आप को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन को मारने के लिए, जबकि ऑलमोस्ट सारा युद्ध तो खत्म हो गया था, अब जीत गए थे, अब सब कुछ हो गया था, अब वापस देखो भय खड़ा हो गया, ऐसे लग रहा था कि अब कोई भय नहीं है, लेकिन वापस एक भय खड़ा हो गया। ब्रह्मास्त्र दूर से तेज गति से ब्राह्मण का अस्त्र जो छोड़ा गया था, ब्रह्मास्त्र आ रहा है अर्जुन को मारने के लिए, अर्जुन भयभीत हो गए, अब क्या करूं, ब्रह्मास्त्र काटने का उपाय तो मुझे पता है अर्जुन सोच रहे हैं, लेकिन इसे काटूं तो मैं ब्रह्मा का अपमान भी कर रहा हूं, काटूं के नहीं काटूं परिस्थिति समझ नहीं रही है। हां ऐसी भयभीत परिस्थिति में वो क्या कर रहे हैं, उसे पता है कि अगर मैं भगवान की शरण में जाऊंगा तो मैं निर्भय हो सकता हूं, तुरंत ही भगवान की शरण में जाते हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर त्वम एक दैय माना नाम अपवर्गोसी संत्रते, वहां भी वही है देखो, भक्ता नाम अभयंकर, यही श्लोक का एक लाइन है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण हे कृष्ण हे महाबाहो, आपके तो इतने महाबाहु है, विशाल हाथ है, भक्ता नाम अभयंकर, आप चारों ओर से भक्तों की रक्षा कर सकते हैं, सभी परिस्थिति में आप भक्तों की रक्षा कर सकते हैं, भक्ता नाम अभयंकर त्वम एक ही दैयमाना नाम, मीन्स आप ही केवल एक है जिसकी शरण भयभीत परिस्थिति में लेना चाहिए, क्योंकि आप ही केवल संश्रुते यानी इस संसार के सारे भयों से दैयमाना नाम मुक्ति दिलवा सकते हैं, इसलिए हे कृष्ण मैं आपकी शरण में आया हूं, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। और देखा गया है कि जब जब भक्त ने भगवान की शरण हृदय से ली है, पुकारा है, चाहे वो शुद्ध भक्त है चाहे साधना भक्त है, हरेक को भगवान रक्षण देते हैं, निश्चय ही रक्षण प्रदान करते हैं, तुरंत ही भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को काटने का उपाय भी कर दिया। जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे उसे मारने के लिए भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा इसी अश्वत्थामा ने, तब वो भी सोची कि जब पहले से ही हम देखते हैं कि हमारी रक्षा भगवान ही कर रहे हैं, तो तो अब हृदय के अंदर जो बच्चा है, जो पेट में गर्भ में बच्चा है, उसकी रक्षा मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ? भगवान ही कर सकेंगे, क्योंकि वो हृदय में विराजमान है ना। पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम त्वत अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। वो कहती है परस्पर मृत्यु तो सबके साथ जुड़ा हुआ है सदैव। इस समय तो मेरे हृदय में आया है, मेरे गर्भ आया है मृत्यु, और मेरे पुत्र को लेने आया है। आप ही केवल रक्षा कीजिए। तो भगवान रक्षा करते हैं हृदय से बैठे बैठे ही। सुदर्शन की ज्योत को इस तरह से गर्भ के चारों ओर कर दिया कि ब्रह्मास्त्र पीछे चला गया, कुछ नहीं कर पाया। तो भय जैसे उनके जीवन में आता है, साधना भक्तों के जीवन में भी आता है, हर समय आता है। दो ही प्रकार के लोग इस संसार में है, भगवत गीता कहती है दो ही प्रकार के लोग हैं। कौन से दो प्रकार है मनुष्य में? सुर असुर, देवता दानव। दानव कभी भगवान का स्मरण नहीं करते, कभी उनको ये विश्वास नहीं कि भगवान की शरण लेना चाहिए, भगवान ही हमें भय से बचाएंगे। बल्कि वो तो ये सोचते कि जब जब भी आते हैं हमारे लिए खतरा है, भय है। जब जब विष्णु आते हैं हमारे लिए खतरा है। जबकि सूर जो होते हैं देवता, वो क्या सोचते हैं कि हम जब भी भय में हैं विष्णु का स्मरण करें, हम निर्भय हो सकते हैं। आजकल का समाज अलग है थोड़ा। आजकल का समाज में दो मानव जात विभाजित नहीं है, देवता और दानव या सूर और असुर। आजकल का जो युग चल रहा है, इस समय जो कलयुग चल रहा है, उसमें दो ही जात मानवों में विभाजित की गई है। कौन सी दो जात है कोई बता सकता है? अनुभव पे आधारित, शास्त्रों पे आधारित नहीं कह रहा हूं। आजकल दो ही जात मनुष्यों में, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ये सब तो शास्त्रोक्त बात है, ये तो सब कोई मानता नहीं। आजकल दो ही जात बची है मनुष्य में, निर्धन और धनी। जो निर्धन है उसकी एक समझ लो अलग ही जात है या अलग ही कास्ट है, और जो धनी है उसका समझ लो एक अलग ही जात है, अलग ही कास्ट है। फिर वो धनी जन्म से चमार भी क्यों ना हो, लेकिन सत्ताधीश है, राज है, हा? चीफ मिनिस्टर है, तो उसकी एक अलग ही शान है, हा? उसकी एक अलग ही पूजा है, उसको लोग भगवान के रूप में पूजते हैं। और जो कोई भक्त है, साधु है, अगर उसके पास सत्ता नहीं है, धन नहीं है, हा? तो वो कैसा भी हो, उसको चमार से भी बदतर जीवन कभी कभी उसको प्रदान किया जाता है समाज के द्वारा। ये परिस्थिति है। तो भक्तों को हर परिस्थिति में जब भी भय आता है, चाहे हम निर्धन जाति के क्यों ना हो, हमें यह सीखना है इस संदेशों से, इस भागवत से, कि हर परिस्थिति में हमें भगवान की शरण लेना है। भगवान की शरण में जाएंगे तो भले हमारा कोई नहीं है, लेकिन भगवान निश्चय जगन्नाथ हमारी रक्षा करेंगे, हर परिस्थिति से हमें बचाएंगे। हमारी साधना चाहे स्ट्रांग है या किसी कारण से नहीं है, लेकिन जब जब आप भगवान को याद करेंगे, निश्चय भगवान आपकी रक्षा करेंगे। ये अनुभव आप कई लोगों ने किया भी होगा अपने अपने जीवन में। एक बार की मायापुर की घटना मैंने बताई थी, कुछ लोग ने सुना होगा, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि आज भी भक्तों के जीवन में भगवान कैसे उनकी रक्षा करते हैं, भयंकर परिस्थिति से उनको बचाते हैं। एक माता जी थी, मैंने बताया था, उनका नाम था अली कृष्ण माता जी, जो तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज की डिसाइपल थी। उसका विवाह हुआ था एक उड़ीसा के लड़के के साथ। ये माता जी सिंधी थी, पूना से। और फिर उस लड़के ने कहा कि चलो मायापुर में ही रहेंगे हमेशा, शहर में रहना डिफिकल्ट होते जाए, तो लोग मायापुर रहने गए थे। मायापुर में शिक्षक थी, वो टीचर बनी थी अपनी मायापुर इस्कॉन स्कूल की। और कुछ समय, दो तीन साल उनका जीवन चला। वो इस्कॉन में जब कोई सेवा करता है तो इस्कॉन वालों को पता है कि बहुत ही अल्प मेंटेनेंस अमाउंट मिलता है, ताकि आपका गुजरान चले, कोई सेविंग कोई कर नहीं सकता है। पहले का कुछ रहा है अपने पास तो वो सेविंग रहता है। लेकिन दो तीन साल के बाद क्या हुआ, उन दोनों का लड़ाई झगड़ा होने लगा और डाइवोर्स हो गया। अब इस्कॉन मायापुर का एक नियम है, हालांकि नियम बनाया लेकिन बिल्कुल मेरे हिसाब से तो वेदोक्त नहीं है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डाइवोर्स जिसका भी होता है ना, उसको मायापुर इस्कॉन कैंपस छोड़ना पड़ेगा, बाहर जाके रहने का, वो अंदर नहीं रह सकता है। तो उन दोनों को कैंपस छोड़ के बाहर जाना पड़ा। अब जब डाइवोर्स है तो लड़की तो अकेली हो गई, लड़का तो उड़ीसा कहीं मंदिर में चला गया, अब ये बिचारी अकेली हो गई। अब इसकी एक पुत्री भी थी और उसके पास, क्योंकि कैंपस के बाहर आई और स्कूल कैंपस के अंदर था, उसका जॉब गया, अंदर जा नहीं सकती वो, उसको जॉब से निकाला, उसको पति चला गया, उसका कुछ ठिकाना नहीं और तो कोई था नहीं। ये बाहर आके भाड़े पे कमरा लेके रहती है, लेकिन यही सोचती है कि भाड़े पे कितना दिन बिताऊं मैं, पैसा कहां से आएगा, 2-3 हजार भाड़ा और 3-4 हजार खर्चा, 6-7-8 हजार हर महीना कहां से आएगा। उसके पास संपत्ति में केवल 3 गोल्ड बिस्किट बचे थे, उसने स्वयं मुझे बताया था और बोला था, और वो भी कितने 8-8, 10-10 ग्राम वाले, ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं, उस समय शायद गोल्ड का भाव 15,000 रुपया रहेगा। तो उसने वो 2 कॉइन्स बेचकर 30,000 रुपया प्राप्त करके करीबन 1 साल बिताया। फिर लास्ट में 1 ही कॉइन बचा था। अब वो सोच रही थी कि 1 कॉइन भी तो खत्म होगा ना 3-4 महीने के बाद, फिर क्या करूंगी पता नहीं है उसका। तब वो सोचने लगी कि अगर 1 ही कॉइन बचा है आज, नहीं तो 4 महीने के बाद मैं निर्धन हो जाऊंगी, मेरा तो कोई मत है नहीं, तो मैं तब क्या करूंगी, तब भी जाके मुझे भगवान की शरण ही लेना पड़ेगा, तो 4 महीना और क्यों बिगाड़ दूं, मैं आज ही क्यों ना भगवान के शरण में चली जाऊं। और वो गोल्ड का वो बिस्किट लेके उसने अपना, बोलते हैं ना कि मंदिर में प्रवेश अलाउड नहीं था, फिर भी समाव और अदरवे मैनेज करके अंदर गई, नरसिंह देव के पास गई मायापुर में, नरसिंह देव को प्रार्थना किया कि अब ये एक बचा है लास्ट रिसोर्ट, ये मुझे पता नहीं कि ये कितना दिन मुझे टिकाएगा, लेकिन आप तो मुझे पूरा जीवन ही निर्भय रख सकते हैं, मैं भयभीत भी हूं, ये एक काम करो कि ये लास्ट जो गोल्ड कॉइन है ना नरसिंह देव, आप ही रखो और आपको जो करना है करो करके उसने दान पेटी में डाल दिया वो कॉइन। अब उसके पास कुछ नहीं है, निर्धन। कैन यू इमेजिन, यू नो कोई कर सकता है? आई डोंट थिंक वी कैन डू इट। और वैसे वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवोटी नहीं थी, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एंड नॉर्मल हम लोग जैसे ही थी, लेकिन बोलते हैं ना अभयंकर, जब उसको भय की परिस्थिति आई तब उसको ये संदेश सब याद आए होंगे, बोले अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है, अब उसी के पास जाना पड़ेगा, अभयंकर के पास। उसने दे दिया सचमुच गोल्ड कॉइन, लास्ट जो उसके पास संपत्ति थी उसने कॉइन नरसिंह भगवान को दे दिया, बॉक्स में डाल दिया, बोले नहीं अभी जो होना है वो होने दो। और वो बाहर आ गए, आप मानेंगे नहीं, विद इन अ वीक उसको एक लंदन के मल्टी बिलियनर के साथ शादी हुई, मल्टी बिलियनर। कैन यू इमेजिन, 8 दिन के अंदर, पहले कुछ पता नहीं था, कभी मिले नहीं थे, समाओ नरसिंह देव अरेंज एवरीथिंग, 8 दिन में उसका शादी एक मल्टी बिलियनर लंदन के एक भक्त के साथ हुआ, जिसने लंदन में से आकर मायापुर में रहना कबूल भी किया और मायापुर में 2 घर भी खरीदे, एक अपने लिए परिवार के साथ और एक उसके माता पिता जो पूना में निर्धन अवस्था में थे उनके लिए भी, और उनको भी पूना से बुला लिया, बोले आप भी मायापुर में हमारे साथ ही रहिए करके, और लंदन में घर, कलकत्ता में घर, वो सब तो था ही, और वो भी एक इनिशिएटेड डिवोटी था लंदन का। तो देखिए भक्ता नाम अभयंकर, भगवान ने कैसे उसको प्रोटेक्ट किया है ना। यहां पे वसुदेव ये नहीं सोच रहे कि अब क्या होगा, 8वां पुत्र आएगा, कंस मारेगा क्या, फिर क्या होगा, पता नहीं है किसी को। यहां तक कि यदुवंश के जितने राजा थे सभी लोग भाग गए थे, बहुत ही कम लोग वहां मथुरा नगरी में बसे थे, कंस से इतने डरे हुए थे। वसुदेव तो जेल में थे, बाहर में अक्रूर जैसे कुछ लोग बचे थे, वो भी इसीलिए रहे, अक्रूर जैसे भक्त वो भी भागना चाहते थे, लेकिन वो लोग सोच रहे थे कि जब भविष्यवाणी हुई है कि 8वां पुत्र स्वयं भगवान कृष्ण आएंगे, अगर हम भाग जाएंगे तो हमको वो लीला का दर्शन नहीं मिलेगा, तो डर के मारे भागकर चले जाने से हम ये सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे कि भगवान का अवतार होगा और हम उसे दर्शन ही नहीं ले पाएंगे उनका। तो वो भयभीत परिस्थिति में भी मथुरा में रहना उन्होंने स्वीकार किया था। ऐसे बहुत कम लोग थे जिसमें अक्रूर उनके लीडर थे सर्वश्रेष्ठ, वो कुछ कम भक्त लोग ही ये दिव्यतम शास्त्र के संदेश को जानते हैं, भक्ता नाम अभयंकर। हर परिस्थिति में भगवान जो है वो हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि वो विश्व के आत्मा है। अब विश्व आत्मा का इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने 2 अर्थ समझाया। प्रथम अर्थ समझाया विश्व आत्मा का अर्थ है जो जिससे ये पूरा विश्व चलता है, विश्व के आत्मा है, जैसे आत्मा नहीं तो शरीर नहीं, वैसे परमात्मा नहीं तो विश्व नहीं, इसलिए विश्व आत्मा, विश्वात्मा कहते हैं। लेकिन दूसरा बहुत ही अच्छा अर्थ प्रभुपाद जी समझाते हैं, विश्वात्मा का अर्थ होता है कि हरेक जीव का जो प्रिय है, हरेक जीव का जो प्रिय है उसे विश्वात्मा कहते हैं। तो प्रश्न ये होता है कि हमारे प्रिय तो इतने नहीं है जितने हमारी पत्नी प्रिय है हमें, जितने हमारे बच्चे प्रिय है हमें, जितना धन हमें प्रिय है, हा? जितने भाई माता पिता प्रिय है, जितना हमारा सृष्टि का फ्लैग 50 लाख का प्रिय है हमें, उतने प्रिय तो हमारे कृष्णा हमें नहीं है। तो विश्वात्मा ये कैसे, ये भौतिक आध्यात्मिक जगत के लिए तो 100% विश्वात्मा है, वहां हरेक के प्रिय कौन है, भगवान। वो अपने सखा उनको मानते हैं, उनको कभी डांटते हैं, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको नचाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे ही भय आएगा तो क्या करेंगे, कृष्णा कृष्णा आप ही रक्षा करिए। अगर बकासुर आ गया तो फिर वो नहीं कहेंगे अरे कृष्णा हम तो तेरे से ज्यादा शक्तिशाली है, तेरे को गेम में हरा देते, तू साइड में हम बकासुर से फाइट करते, नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं कृष्णा कृष्णा आप ही के शरण में आते, आप ही इनसे बचाइए। वो जानते हैं, उस तथ्य को समझ रहे हैं कि अभयंकर केवल यही कर सकते हैं, विश्वात्मा केवल यही है, यही हमारी रक्षा करेंगे। तो वहां ही वो विश्वात्मा, लेकिन इस जगत में क्या होता है, हम लोग जब आते हैं तो इस विश्वात्मा का चिंतन ही करना नहीं चाहते, हृदय में से चिंतन स्वाभाविक आएगा, जैसे मन का कार्य ही चिंतन करना है, स्वाभाविक ही भगवान का ही चिंतन आएगा। लेकिन इस जगत के माया के अनेक प्रलोभन को देखते हुए हम उसका चिंतन शुरुआत में जबरदस्ती करते हैं, शुरुआत में यानी इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूं, जब इस जगत में आए, भौतिक जगत में शुरुआत में थोड़ा जबरदस्ती हम माया का चिंतन, चलो देखिए ये क्या है वो क्या है, अरे देखने तो दो। हाँ, जैसे आजकल कभी कभी कोई लोग कहते हैं ना, अरे वो इन्फिनिटी मॉल अच्छा खुला है, कभी देखा नहीं है, कभी गए नहीं है, चलो देखते तो चलो जाकर देखेंगे, संडे शाम टाइम पास भी हो जाएगा, देखेंगे तो सही। तो ये हम जबरदस्ती अभी चिंतन करने के लिए, माया का चिंतन करने के लिए संडे इवनिंग टाइम पास करने के बहाने भी जबरदस्ती जा रहे हैं, अन्यथा चिंतन नहीं है। इन्फिनिटी मॉल में क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, क्या लेना है, क्या किसी को चिंतन है, अगर नहीं गए तो, नहीं गए तो नहीं, इस समय हम जबरदस्ती जाते हैं। फिर जब जाते हैं तो कोई मॉल कोई दुकान अच्छी लगी, कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसका चिंतन हमने शुरू किया, जैसे ही उसका चिंतन गार्ड किया क्या हो जाता है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजयते काम। इतना स्ट्रॉन्ग चिंतन होता है ना कि अब विश्वात्मा को हम भूल जा रहे हैं। अगर ये एक जीवन में एक व्यक्ति के साथ एक छोटे से उदाहरण से विश्वात्मा भूलने का कारण हो सकता है, एक छोटे से नए मॉल में घुसकर नया कोई एक प्रोडक्ट देख लिया और 4-5-10 महीना एक आध साल उसका चिंतन कर सकते हैं, तो सोचो हमने करोड़ों जन्म इस भौतिक संसार में बिताए हैं, तो अब तो हम पूर्णतः विश्वात्मा को भूल गए हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि अब तो हमने कितने भौतिक उपकरणों का भोग कर लिया है और कितने भौतिक उपकरणों का भोग करना बाकी भी है। तो कर लिया है उसका स्वाद तो चखा हुआ है, उसको तो छोड़ेंगे नहीं, और जो नहीं किया है उसके स्वाद की कामना में भी चिंतन चालू रहता है हमारा। इसीलिए विश्वात्मा इस जगत में शायद कुछ लोगों के लिए प्रिय नहीं है, तो फिर ये व्याख्या गलत हो गई, ये व्याख्या गलत हो गई ना, सबके प्रिय है वो तो। देखिए जब भी कोई बात की जाती है ना तो प्राय 99.99% अगर सही हो ना तो उसे 100% ही माना जाता है, कभी कभार कोई छोटा मोटा परसेंटेज या एक्का दुक्का ना हो अपवाद, तो वो अपवाद में गिना जाता है, उसको रूल नहीं बनाया जा सकता है, अपवाद होता है कभी कभी। हाँ, तो ये जो भौतिक जगत है ना वो वास्तव में एक्चुअली आध्यात्मिक जगत का एक अपवाद है, एक अंश 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 मात्र है, यानी कोटि 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 जीवात्मा उधर है और हम लोग बहुत कम लोग हैं। जैसे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, जेल में जितने लोग होते हैं उसकी तुलना में शहर में तो बहुत सारे लोग होते हैं, वैसे ये जेल है और वो शहर है, अंश। कृष्ण भगवत गीता में कहना ना, एक अंशे न स्थितो जगत, मेरा केवल एक कण मात्र अंश ही पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, एकांत से न स्थितो जगत। तो हम भी एक्चुअली वास्तव में विश्वात्मा को प्रेम कर रहे हैं, लेकिन क्यों गए हैं? क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो कहाँ है? भौतिक उपकरणों में है, इसलिए भयभीत है, इसलिए विश्वात्मा को प्रेम नहीं कर रहे हैं। और प्रभुपाद कहते हैं जो भी यह दशम स्कंध का पठन चिंतन कर रहा है वो निश्चय ही विश्वात्मा को प्रेम करने लगेगा और निर्भय बन जाएगा। निर्भयता उसके हृदय में सचमुच आती है। हम चाहे दो चार दस महीना भगवान को भूल जाएं, लेकिन भगवान हमें कभी नहीं भूलते। जिस क्षण जैसे ही आप उन्हें याद करोगे उसी क्षण से वो आपको मदद करना शुरू कर देंगे, आपको निर्भय बना देंगे। ये अनुभव हम सदैव करते आते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की ताय गौर प्रेम आनंद। कोई प्रश्न है किसी का? टीका टिप्पण, एनी क्वेश्चन कॉमेंट? सही बात। बराबर है। टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड जो है वो वैसे टेम्पररी इसीलिए बताया जाता है कि इसका बार बार उसका सर्जन होता है, विनाश होता है, सर्जन होता है, विनाश होता है, सर्जन होता है, विनाश होता है। क्योंकि उसका विनाश हो रहा है इसीलिए उसको टेम्पररी कहा है। अब कभी कभी हम लोग टेम्पररी शब्द का अर्थ निकालते हैं दो चार दिन, दो चार साल, दो चार महीने या दो चार दस का, यानी तीस चालीस साल, पचास साल, उसको हम टेम्पररी कहते हैं। लेकिन भगवान की दृष्टि में टेम्पररी यानि 432 करोड़ साल, उसको 2 से गुनो, उससे 30 से गुनो, उससे 365 से गुनो, उसको 1000 से गुनो, तब उसको भगवान टेम्पररी कहते हैं, है ना। अब वो हमारे लिए बहुत बड़ा परमानेंट हो जाएगा। और इसीलिए ज्यादातर लोग, हम लोग देवताओं को परमानेंट क्यों मानते हैं? क्योंकि वो देवताओं का जीवन है, तो हमें वो परमानेंट लगते हैं, हम अपने आप को टेम्पररी समझते हैं। लेकिन सारा भौतिक जीवन टेम्पररी है एक दृष्टि से, क्योंकि इसका विनाश हो रहा है। अगर विनाश नहीं होता तो इसे भी टेम्पररी कहने की आवश्यकता नहीं रहती थी। भगवान पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण ही निकला हुआ है। कहां अपूर्ण है? ये भौतिक जगत किसने अपूर्ण कहा? ईसोपनिषद खुला कहता है कि ये पूरा जगत पूर्ण है। ईसोपनिषद का सबसे पहला ही प्रख्यात श्लोक क्या है? ये पूरा जगत पूर्ण है, इसमें सब कुछ पूर्ण है। अगर हम लोग अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ छोड़ देना और भगवान के इस बताए हुए नियमों पर हर जीव यहां का चले ना, तो यह जगत भी उतना ही पूर्ण है जितना आध्यात्मिक जगत है। इसमें कोई कमी नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे ना, एक पिता के अगर 6 पुत्र है और वो 12 मैंगो ला रहा है, और 12 मैंगो अगर सब लोग समझदारी से दो दो बांट ले तो सबका तुष्टि पुष्टि हो जाएगा। लेकिन अगर शक्तिशाली पुत्र ये कहता है कि 12 में से 10 मेरा, तो जो 10 छीन के चला गया तो अब 2 जो है ना वो बाकी के 5 को अपूर्ण लग रहा है। बस यही जगत में होता है ना। शक्तिशाली लोग जो होते हैं वो 90%, अभी इतना समय नहीं ना, तो मैं आपको डिटेल में इकोनॉमी प्रिंसिपल्स कैसे इस जगत में चलते हो समझाता था कि ये पूर्ण अपूर्ण क्यों लग रहा है। कि इसमें कितने पॉलिटिशियंस, कितने धनी लोग जो है ना, वो लोग क्या करते हैं, जानबूझ के आपको अपूर्ण रखना चाहते हैं, ताकि आप अपूर्ण रहेंगे तो उनसे कभी लड़ाई नहीं करेंगे। वो अपूर्ण रखना है आपको। अगर आपको रोटी कपड़ा मकान का समझो समस्या ना हो ना हम सबको, तो कभी ना कभी तो हम मोर्चा निकालते ही थे पॉलिटिशियंस के सामने, इतना परेशान करते हैं। लेकिन क्यों परेशानी सहन करते हुए बैठे? क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? रोटी कपड़ा मकान में सबको जानबूझ के फंसाया है। घर के दाम जानबूझ के 4 लाख के 40-50 लाख की है, ताकि कभी कोई ये सोचे ही नहीं कि मुझे मोर्चा निकालना है। उसको मोर्चा निकालना ही नहीं है, उसको तो चल के होम लोन भरना है। ये पूरा इकोनॉमिक्स है बड़े लोगों का। तो पूर्ण जगत को अपूर्ण ये असुर लोग कर रहे हैं, बाकी ये पूर्ण ही है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।